प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ आज हम सुनते हैं सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमें हर एक प्रकार की बुराई से, व्यर्थ की बातों से, बुरी संगति से आप बचाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दबाव और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, उन्हें छुए चंगाई दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम मोआब के विनाश की भविष्यवाणी को देख रहे हैं परंतु यशाया सोअर से सहानुभूति दिखाता है। मोआब का दंड ऐसा कठोर था कि यशाया भी कांप उठा था। तो आइए हम देखें यशाया 15 अध्याय उसका 5 पद। लिखा है, मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है, उसके रईस सोअर और इग्लत शलिशिया तक भागे थे। देखो, लुहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। मोआब इसराइल का बैरी था परंतु यशाया उनके घोर संकट को देखकर पिघल गया था। वह परमेश्वर के मन का प्रदर्शन है। आज भी मनुष्य के पापों के उपरांत भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और अपनी दया उनके लिए उपलब्ध कराता है। यदि वे मन फिराकर उसके पास आ जाएं, तो वह उन्हें नाश नहीं करता। शेष अध्याय नगर के विनाश का चित्रण प्रस्तुत करता है जो अंततः पूरा हुआ। मोआब के लिए दया पाने का अंतिम प्रस्ताव। मेरे मित्रों, हम अध्याय 16 में हम देखते हैं मोआब को परमेश्वर का दया पात्र बनने के लिए अंतिम पुकार के साथ आरंभ होता है। तो आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय 16 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। इसराइल की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए मोआब एक मेमना भेजे। मेमना बलि का पशु था जो प्रभु यीशु का प्रतीक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु को जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना कहता है। यदि मोआब परमेश्वर की वेदी पर मेमना बलि करवाएगा तो इसका अर्थ होगा कि वह इसराइल के परमेश्वर को मानता है, परंतु उन्होंने मेमना नहीं भेजा। मोआबी इस तथ्य को अस्वीकार करके कि उनसे बड़ी इच्छा किसी की है और वे परमेश्वर के समक्ष पापी हैं, धर्मी बनना चाहते थे। यह उनका बहुत बड़ा पाप था। यशाया 16 उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि अर्नोन की नदी वह बड़ी नदी नहीं है कि अश्शूरों को रोक पाती, वे वहां पराजित हुए थे। यशाया 16 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 16 पद में याकूब कहता है कि दाऊद का डेरा गिरा हुआ है और परमेश्वर अन्य जातियों द्वारा कलीसिया का निर्माण करने के बाद दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाएगा। यशाया का यही वचन है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि मोआब का प्रबल घमंड। यशाया 16 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था, उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। जी हाँ, मोआब को दंड देने का परमेश्वर का कारण यही था कि मोआब ने घमंड में आकर परमेश्वर की दया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। परमेश्वर उन्हें बचा सकता था, परंतु उन्होंने अपनी झूठी धार्मिकता पर भरोसा रखा। 3 वर्ष में दंड पूरा होगा, इसको भी हम देखेंगे। यशाया 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी, परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब कुछ तुच्छ ठहरेगी और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। परमेश्वर इसराइल के संपर्क में आने वाले राष्ट्रों को दंड देगा तो वह कैलेंडर के अनुसार चलेगा। कलीसिया के साथ व्यवहार करने में वह कैलेंडर पर ध्यान नहीं देता है। मोआब के विनाश का समय 3 वर्ष का होगा और 3 ही वर्षों में अश्शूरों ने मोआब को नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने उन्हें घमंड का दंड दिया था। भोर का सितारा शैतान भी घमंड से भर गया था। वह अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था और परमेश्वर से अलग राज्य करना चाहता था। वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। आज मुक्त विचारक धर्म विज्ञान का भी यही स्थान है। घमंड ही के कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है, उसके प्रकाशन को नहीं मानता है। अधिकांश विश्वासियों को कर्म आधारित धर्म चाहिए। वे उद्धार पाने के लिए कर्मों का आधार चाहते हैं, क्योंकि यह उनके घमंड को भाता है। कलीसिया के सदस्यों को प्रायः ढोंगी, स्वार्थी और यहां तक कि परमेश्वर विरोधी कहा जाता है। यह सब कुछ मनुष्य के घमंडी मन के उद्गार हैं। यशाया 53 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। जी हाँ, मोआब को दंड मिला, वह आज भुलाया जा चुका एक देश है, परंतु हमारे लिए उसका संदेश आज भी जीवित है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 17 और 18 से कुछ विशेष बातों को देखेंगे। इसका विषय है दमिश्क और एप्रेम को दंड, कूश की नदियों के पार के क्षेत्र को दंड। तो आइए हम देखें दमिश्क और एप्रेम को दंड। दमिश्क आराम अर्थात सीरिया का मुख्य नगर था और आज भी है। वह नगर विश्व का सबसे पुराना नगर कहलाता है। अन्य नगर भी हैं जो संसार के सबसे पुराने नगर कहलाते हैं। आप जॉर्डन से चलेंगे तो वहां एक पत्थर पर यरीहो नगर की दूरी लिखी है। संसार का सबसे पुराना नगर यरीहो। दमिश्क के बारे में विंदरिंगा ने लिखा, दमिश्क किसी भी नगर की तुलना में बार बार नष्ट हुआ था, वह राख से फिर विकसित हो जाता है। इस अध्याय में दमिश्क संपूर्ण आराम देश का प्रतीक है। एप्रेम वास्तव में इसराइल का एक गोत्र था और उसी गोत्र के नाम पर नगर भी था। एक पर्वत को भी यह नाम दिया गया था। परंतु वास्तव में यह नाम किसी मनुष्य का था। धर्मशास्त्र में एफ्रेम को इसराइल के 10 गोत्रों का प्रतीक माना गया है। ये 10 गोत्र उत्तरी क्षेत्र में वास करते थे। भविष्यद्वक्ताओं ने इस नाम को प्रतीकात्मक रूप में ही काम में लिया है। होशे 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, इसराइल ने हठीली कलोर के समान हट किया है, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है। अतः हमारे पास यहाँ अध्याय 17 में दमिश्क और एफ्रेम के दंड का उल्लेख है। दूसरे शब्दों में आराम और इसराइल राष्ट्रों को दंड, क्योंकि इसराइल ने यहूदा के विरुद्ध आराम से साठ गांठ की थी और इसलिए दंड पाने में भी वह आराम का साथी होगा। अपराध में सहभागी होने का अर्थ है दंड में भी सहभागी होना। तो आइए हम पढ़ें यशाया 17 अध्याय उसका 1 पद, लिखा है, दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। कुछ लोग शीघ्र ही कहेंगे कि दमिश्क तो ज्यों का त्यों ही है, यह भविष्यवाणी तो पूरी अभी नहीं हुई है, वह नगर पहले जैसा ही है। मैं पहले कह चुका हूं कि भविष्यवाणियां 2 प्रकार से पूरी होती हैं, एक दूरस्थ भविष्य में और निकट भविष्य में स्थानीय परिस्थितियों में। इस भविष्यवाणी से उत्पन्न समस्या के 2 संभावित समाधान हैं। पहला, इतिहासकार प्राचीन नगरों की भौगोलिक स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होते हैं। किसी ने इतिहास लिखा और फिर कहा कि संसार में सबसे बड़े झूठे इतिहासकार होते हैं। आज के दमिश्क में नगर के अनेक खंडहर हैं। आप किसी भी खंडहर को देखें, वह प्राचीन दमिश्क का ही खंडहर है। प्राचीन नगरों के पुनः निर्माण उसी स्थान पर नहीं होते थे जो पहले नष्ट किया जा चुका है। वे वहां से हटकर नया निर्माण करते थे और दमिश्क के साथ भी ऐसा ही था। दूसरी ओर यरूशलेम के साथ ऐसा नहीं था। वह नगर ठीक उसी स्थान पर फिर बसाया गया है जहां वह पहले था, क्योंकि उनके लिए स्थान का मुख्य महत्व था। अतः हम प्राचीन दमिश्क की समस्या पुरातत्वताओं पर छोड़ देते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, दमिश्क ने संपूर्ण इतिहास में युद्धों का विनाश सहा है, परंतु जगह बदल बदल कर फिर बस गया। वह संभवतः संसार का प्राचीनतम नगर है। उसने अब तक पृथ्वी के प्रत्येक विनाश को झेला है, विशेष करके ऐसे स्थान में जहां विभिन्न सेनाओं ने एक के बाद एक प्रवेश किया, परंतु वहां क्लेश में वह बचेगा नहीं, वह नष्ट हो जाएगा। और जैसा यशाया कहता है, दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। ये दोनों ही व्याख्याएं यशाया की भविष्यवाणी की सत्यता को सिद्ध करती हैं। यशाया 17 उसके 2 पद में लिखा है, अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। अरोएर के नगर, यह दमिश्क का बाहरी क्षेत्र है, यह संपूर्ण क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है और फिर से होगा। तब हम यशाया 17 के 3 पद में पढ़ते हैं, एप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इसराइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, इसराइल के उत्तरी राज्य को दंड का अपना भाग भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने दमिश्क के साथ समझौता किया है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 29 पद के अनुसार, अशूर के राजा तिग्लती प्लेसर ने आकर दोनों ही देशों को घेर लिया था। और दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 6 पद के अनुसार, अशूरी शलमनेसेर ने उन्हें बंदी बनाया और ले गए। यह यशाया की भविष्यवाणी की आंशिक पूर्ति थी। कुछ के अनुसार तो वही यशाया की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। मेरे विचार में यह भविष्य की ओर भी संकेत करती है। निसंदेह यह भविष्यवाणी एक बार पूरी हो गई है, परंतु परमेश्वर के वचन में कभी कभी परमेश्वर भविष्यवाणी को एक बार पूरा करके हमें बताना चाहता है कि वह भविष्यवाणी अभी एक बार और पूरी होगी। इस अध्याय के शेष भाग में हम देखेंगे कि दंड तो निश्चय ही दिया जाएगा। यशाया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपने दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। यशाया उत्तरी राज्य इसराइल के लिए भविष्यवाणी कर रहा है और उसकी भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई है। इसका आत्मिक अर्थ भी है। सब भविष्यवाणियों में आत्मिक अर्थ छिपा होता है। आज इसराइल में बहुत पेड़ लगा दिए गए हैं। जो कोई भी वहां जाता है पेड़ लगाता है। लबानोन के देवदारों के जंगल तो अब समाप्त हो गए हैं, परंतु वहां आज भी बहुत पेड़ हैं। जैतून का पर्वत कभी पेड़ों से भरा हुआ था। जब वहां तुर्क रह रहे थे तब लगभग पूरा क्षेत्र ही हरियाली से वंचित हो गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने उस देश में वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया था और इसराइल की वर्तमान सरकार आज भी इस नीति का पालन कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां लाखों पेड़ उग रहे हैं। कूश की नदियों के पार के क्षेत्र के लिए भविष्यवाणी हम देखेंगे अध्याय 18 में। अब हम अध्याय 18 में पांचवें दंड की भविष्यवाणी को देखते हैं। यह दंड कूश देश की नदियों के पार के क्षेत्र का होगा। यशाया के विचार में यह कौन सा देश है स्पष्ट नहीं। अतः इस विषय में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विचारकों का मत है कि वह क्षेत्र मिस्र है, परंतु यशाया का विवरण मिस्र के उपयुक्त नहीं है। और फिर मिस्र के बारे में अगले अध्याय में भविष्यवाणी है। वहां हम देखेंगे कि परमेश्वर का व्यवहार अभी उस राज्य के साथ पूरा नहीं हुआ है। उसके विषय में की गई भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई है। कुछ कहते हैं कि यह भविष्यवाणी इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में है, परंतु वचन ऐसा नहीं कहता है। मेरा मानना तो यह है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कूश देश उपयुक्त है, परंतु प्रश्न यह है कि यह कूश कौन सा देश है, क्योंकि धर्मशास्त्र में दो कूश देशों का उल्लेख है। एक कूश देश इथोपिया है और वह अफ्रीका में है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 पद के अनुसार एक और कूश है जो एशिया में था। मेरे विचार में तो यह कूश देश अफ्रीका का है। वह नदियों के पार का देश है। कूश की नदियां नील नदी है। परमेश्वर अब संसार का ध्यान कूश अर्थात इथोपिया की ओर आकर्षित करता है। यशाया 18 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है। हाय उचित अनुवाद नहीं है। यह वही शब्द है जिसे अध्याय 55 में अहो लिखा गया है। यह दुख की गहरी सांस है। यह एक प्रकार से संबोधन है। परमेश्वर कह रहा है, आह हे मेरे देश, मेरी बात सुन, यह सुन। पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे बताया कि इथोपिया अर्थात कूश चिड़ियों के लिए जाना जाता है। उसे पंखों का देश भी कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि यह देश इथोपिया ही हो सकता है। यशाया 18 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और समुद्र पर दूतों के नरकट की नावों में बैठा कर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदे वाले भी हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। कुछ विचारक इस देश को इंग्लैंड या अमेरिका कहते हैं, परंतु नरकट की नाव उनकी नाव का चित्रण नहीं है। डॉक्टर एफ सी जेनिक्स यशाया पर अपने कार्य में इन नावों को भाप से चलने वाली नाव बताते हैं, परंतु आज की नावें तेल से चलती हैं। अतः विचार भी संतोषजनक नहीं है। जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, यह देश इसराइल है और अधिकांश वचन के शिक्षार्थी इस विचार से सहमत हैं। हम यशाया 18 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनेक विद्यार्थी झंडा को मिलाप वाले तंबू का वाचा का संदूक मानते हैं, जो बाद में मंदिर में रखा गया था। वह बाबुल की बंधुआई के समय खो गया था। एक विचार के अनुसार वह इथोपिया ले जाया गया था। मुझे बताया गया है कि वहां एक आराधनालय है जिसमें कहा जाता है कि वह वाचा का संदूक रखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत, परंतु उस देश से एक झंडा लाया जाएगा। हम यशाया 18 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, और जो सामर्थ्य और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सियोन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। मेरे मित्रों, यह वह समय होगा जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु का राज्य होगा और इथोपिया के निवासी आराधना करने के लिए यरूशलेम आएंगे। उनके विरुद्ध दंड की भविष्यवाणी नहीं है। भजन संहिता 87 के 4 में इथोपिया वासी से पूछा गया कि वह वहां क्या कर रहा था, तो वह कहता है वह वहां जन्मा था। इथोपिया के लिए परमेश्वर के पास कहने को अच्छी अच्छी बातें हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग देश को परमेश्वर उनके कार्यों के प्रति दंड देता है, इसके साथ साथ उन्हें आशीष भी देता है। आज यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए मुझे और आपको आशीष पाना है, परंतु हम उसे प्राप्त नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को जांचें, प्रभु के निकट आएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम सब भी दंड से बचे रहें। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुझको पा जाना मेरी प्रथम प्रार्थना है। तेरे भजनों को गाना कैसा मन भावना है।
You know।